ओम शांति। एक बौद्ध सन्यासियों के आश्रम के पीछे बहुत सारे कद्दूओं का एक बगीचा था, जिसमें बहुत सारे कद्दू थे। और एक बार उन कद्दूओं की आपस में लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई हो गई? कद्दूओं की। बहुत लड़ाई हो गई। उनमें दो ग्रुप्स बन गए। एक कद्दू का ग्रुप कहता था, एक तो ये रहेंगे या तो हम। बहुत घमसान लड़ाई कद्दूओं के बीच। तो उनकी लड़ाई को ठीक करने उस आश्रम के जो महंत थे वो आए, और वो सब लोग एक दूसरे की शिकायत करने लगे कि ये जो कद्दू है दूसरे, ये ठीक नहीं है, इनको यहां से हटाओ। दूसरे कद्दू पहले कद्दूओं की शिकायत करने लगे, इनको यहां से हटाओ। तो ऐसे बहुत शोरगुल होने लगा। तो उस सन्यासी जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारा झगड़ा जो है वो मिटेगा, परंतु एक काम करना है, जैसा मैं कहूं वैसा करो। वो कहते हैं हाँ, सब मान जाते हैं। वो कहते हैं अभी थोड़ी देर में सारे भिक्षु आएंगे, वो लोग ध्यान में बैठेंगे, तुम लोगों को एक काम करना है, जैसे वो ध्यान में बैठते हैं ना, वैसे तुम्हें भी खाली एक्टिंग करनी है बैठने की। तो सारे भिक्षु आते हैं उनके ध्यान कक्ष में, और सभी भिक्षु ध्यान मग्न बैठ जाते हैं। तो ये जो कद्दू होते हैं, जो अभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, उनको कहा जाता है तुम भी इनकी तरह बैठ जाओ। तो वो सब भी उनकी तरह ध्यान मग्न बैठ जाते हैं। और जैसे ही समय गुजरता है, जो कि कद्दू एकदम क्रोध में थे, शांत होने लगते हैं खाली बैठने से। उनको कहा जाता है जैसे वो लोग करे बस वैसे करना तुम। फिर थोड़ी देर के बाद वो जो भिक्षु होते हैं अपनी प्रार्थना चालू करते हैं, और प्रार्थना में अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाते हैं। तो कद्दूओं को तो कहा गया था जैसा वो करे तुम भी करना। वो तो सभी ध्यान मग्न बैठते रहते हैं पहले, और जैसे ही देखते सन्यासी अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो वो भी हाथ ऊपर करते हैं। और ऊपर करते हैं तो पाते हैं कि जो बेल थी ऊपर, वो एक ही बेल है, और वो सारे कद्दू उसी बेल से निकले हुए हैं। और धीरे धीरे वो इतने शांत हो जाते हैं, और फिर उनका झगड़ा समाप्त हो जाता है, और वो एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। तो उनको कहा गया था कि तुमको एक ही काम करना है, जैसे वो करते हैं भिक्षु सन्यासी ध्यान मग्न होते हैं, वैसे ही तुम्हें होना है। वो केवल उनको देखकर जैसे वो करते हैं वैसा करते हैं, और करते करते ही क्या हो जाते हैं, खुद ही शांत हो जाते हैं। इसी तरह भगवान ने इस सृष्टि पर जो अपना कार्य किया, उसमें एक आत्मा को ऐसे चुना, और उस आत्मा ने भी ऐसी तपस्या की कि उसका आचरण, उसकी तपस्या एक ऐसा आदर्श बनी कि भगवान कहते हैं बाकी सभी आत्माओं के लिए, यदि तुम्हें शांत होना है, यदि तुम्हें संपन्न बनना है, यदि तुम्हें संपूर्ण बनना है, यदि तुम्हें संपूर्ण वारी जाना है, तुम्हें केवल एक ही काम करना है, जैसे ये करता है वैसे तुम भी करो, अर्थात फॉलो फादर करो। जो जो उसने किया, जो जो उसकी दृष्टि थी, जो जो उसकी वृत्ति थी, जो जो उसका आचरण था, वैसा तुम्हारा ही हो जाए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम। गोपी गीतम में गोपिया गीत गाती है श्री कृष्ण का। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। हे गोविंद हे गोपाल तुम्हारा चलना मधुर, तुम्हारा देखना मधुर, तुम्हारा बोलना मधुर। चलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। हे गिरधर तेरा सब कुछ ही मधुर है। तू मधुरता का जैसे कि तू खान है मधुरता की। क्यों इतना गायन है श्री कृष्ण का? कौन सी वात्मा थी जिसने ऐसे कर्म करे कि द्वापर से अब तक भी उसकी ऐसी पूजा होती है? तो इस अव्यक्त मास में यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जब साकार ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बन गया, जब ब्रह्मा अपनी संपूर्ण अवस्था को पा गया। क्या उसने पुरुषार्थ किया, कैसे उसने पुरुषार्थ किया, यज्ञ के सारा इतिहास हम सब जानते हैं। दादियों के, बड़े भाइयों के, बहनों के अनुभव हम सब ने सुने हैं, पढ़े हैं। और इस अव्यक्त मास में हमें विशेष पुरुषार्थ करना है, जिससे हम बाप समान बने, वो सब कुछ करें जो ब्रह्मा ने किया था, या करने का प्रयत्न करें। क्या हम करें, इसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। केवल कॉपी करने से, केवल वो करने से जो उसने किया, हम अपनी स्थिति को ऊंचा बना सकते हैं। गीता में 18 अध्याय है, महाभारत में 18 पर्व। महाभारत की लड़ाई में 18 सेनाएं थी, 18 अक्षयोनी, 11 एक तरफ 7 एक तरफ। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, रामायण का युद्ध भी 18 दिन चला, और ब्रह्मा ने अपने संपूर्ण बनने की जो तारीख चुनी वो भी 18 ही थी। इस संसार में जितनी भी महान आत्माएं इससे पहले भी हुई है, उनको भी यह आभास हो गया था कि हम जाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु यहां बाबा ने जो उदाहरण दिखाया वो सबसे अनूठा है। आदम के कदम पर कदम कैसे रखे, उसके लिए हम सब जानते तो है, परंतु फिर से एक बार बाबा का जो जीवन है उसकी ओर हम एक दृष्टिपात करेंगे। जैसे बताया गीता के 18 अध्याय है, वैसे ब्रह्मा के जीवन के भी 18 अध्याय है, 18 कदम है। यज्ञ के इतिहास के साहित्य में, इतिहास में और साहित्य भी में भी बहुत जगह इसकी चर्चा है। 10 कदम, 12 कदम, 8 कदम, 16 कदम। आज हम ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऐसे 18 कदम देखेंगे, परंतु वो कदम हम गुणों के रूप में नहीं बताएंगे, परंतु उनके जीवन के रूप में। हम सभी जानते तो हैं जीवन, परंतु एक नई दृष्टि से उसी व्यक्ति के जीवन को हम देखेंगे। सबसे पहला कदम भगवान की प्रवेशता दादा लेखराज में और बाबा का निश्चय। इतिहास में बहुत बड़ा उदाहरण है जय कृष्णमूर्ति का, जिड्डू कृष्णमूर्ति। एनी बसंत नाम की विदेशी महिला जो भारत में थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उसको ऐसा साक्षात्कार कहो या विजन कहो हुआ था कि महात्मा बुद्ध की आत्मा जिसका नाम मैत्रेय होगा उसको शरीर चाहिए और तुम उसे ढूंढो कि वो महात्मा बुद्ध की आत्मा किस शरीर में प्रवेश करेगी। तो वो अपना एक रिसर्च करती है, उसकी पूरी सोसाइटी जो भारत में थी, और एक छोटे से दो लड़कों को, तीन को वो ढूंढती है। एक तो चला जाता है, एक की मृत्यु हो जाती है, एक बचता है और उसको वो ट्रेनिंग देते हैं जो कि जय कृष्णमूर्ति होता है। बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि महात्मा बुद्ध की आत्मा उसमें प्रवेश करे। उसी तरह का उसका आचरण, उसी तरह की उसको नियम संयम इंद्रिय जीत उसको बनाया जाता है बचपन से ही। और फिर बहुत बड़ी यूरोप की सभा में वो दिन घोषित भी होता है, इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं, सत्य घटनाएं हैं, कि जिस दिन महात्मा बुद्ध की आत्माएं मैत्रेय उस बच्चे में, उस युवक में प्रवेश करेगी जो युवक था जय कृष्णमूर्ति। परंतु उस एन मौके पर जय कृष्णमूर्ति, क्योंकि अगर बुद्ध की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाए तो उसका अपना अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर उसके बाद एक परफेक्ट सोल आ रही है, ऐसी ये भक्ति की मान्यता है, एक आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, फिर बुद्ध अपना कार्य उस शरीर द्वारा करेगा। उसके लिए छोटे बचपन से 11 साल की उम्र से उसे तैयार किया जाता है, ऐसे कड़े नियम, ताकि उसको कभी विकार स्पर्श न करे, कभी क्रोध ना आए, कभी काम वासना ना उसके मन में उठे। इसी तरह की सारी ट्रेनिंग उसे दी जाती है। और जब वो समय आता है कि बुद्ध की आत्मा उसमें प्रवेश करने वाली है, वो इनकार कर देता है। इतनी बड़ी सभा के बीच में वो कहता है, ये मुझे स्वीकार नहीं है कि दूसरा कोई मेरे शरीर में प्रवेश करे और वो कार्य करे और महिमा उसकी हो, फिर मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मेरा जो इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है उसका क्या होगा। और वो रिजेक्ट कर देता है, सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है एनी बेसेंट का। ये इतिहास में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। क्या होता है यहां पर, वो युवक इनकार कर देता है क्योंकि उसे स्वीकार नहीं है, मेरा जो मैं है उसका क्या होगा, दूसरी आत्मा मेरे द्वारा काम करेगी, फिर मेरा मैं उसका क्या, यहां क्या होगा। भगवान की प्रवेशता ब्रह्मा में, और बाबा ने अपने मैं को ही मिटा दिया। ब्रह्मा का पहला कदम है निश्चय, यह निश्चय कि जिसने मुझ में प्रवेश किया है वो कौन है, स्वयं भगवान है, और आज के बाद जो कार्य होगा वो मैं नहीं कर रहा, वो शिव बाबा कर रहा है। अपनी हस्ती को मिटा देंगे, कितना बड़ा कदम है, और उसमें इतना निश्चय है, और उस हिसाब से सब कुछ आगे चलना। किसी वरिष्ठ भाई ने कभी अनुभव बताया था कि एक बार मुरली में बाबा ने कुछ ऐसा कर दिया था, इंडिया पाकिस्तान के विषय में कुछ कह दिया, और वो बात पत्रकार लोगों को पता चल गई, मुरली में कुछ ऐसे कह दिया था, थोड़ा सा विवाद आता। तो बाबा के पास अपने वरिष्ठ भाई लोग गए और कहा, बाबा आप ना ये इस तरह की बातें नहीं किया करो। किस तरह की बातें, इंडिया पाकिस्तान वाली बातें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ठीक है मैं शिव बाबा को बता दूंगा, मैं शिव बाबा को बता दूंगा। कैसा निश्चय, कि ऐसा निश्चय हमारा भगवान पर है कि जो मुझे मिला है वो स्वयं भगवान है, और ये जो महावाक्य है मुरली के, ये मनुष्य के नहीं है, उसके है, और उसने जो कहा है और वो ही मैं नहीं कर रहा हूं। सुबह की मुरली संपूर्ण पवित्रता, अर्थात जरा भी अपवित्रता ना हो, जरा भी अस्वच्छता ना हो। क्या मेरा चित्त, मेरा मन इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना दिव्य हो गया है कि अभी भी उसमें घृणा है, नफरत है, बदला है, सूक्ष्म भावनाएं हैं इस तरह की? यदि निश्चय होता, एक कुछ मास पहले साकार मुरली आई थी, बाबा ने कहा था तुम्हारा निश्चय कैसे होना चाहिए, तुम्हारा निश्चय वैसे होना चाहिए जैसे वो बावरी स्त्री जिसका पति कहीं खो गया था और आ गया और गलियों से भटक भाग भाग कर जा रही है उससे मिलने के लिए। क्या तुम्हारा भगवान में ऐसा निश्चय है कि तुम भी भाग भाग के उससे मिलने आ जाओ? यदि निश्चय होता, कहने में तो हम सभी कहते हैं कि हमारा संपूर्ण निश्चय है, क्या पर वैसा है जैसा ब्रह्मा का था? वही सब कुछ इतना जबरदस्त निश्चय है। निश्चय भगवान में, निश्चय उसके ज्ञान में, निश्चय उसके परिवार में, निश्चय ड्रामा में, निश्चय स्वयं में। ब्रह्मा का पहला कदम है निश्चय, अपने निश्चय को चेक करना है। यदि सही में निश्चय होता तो हम अब तक वो सब करते जो उसने कहा है? शायद नहीं। परंतु निश्चय की पहली सीढ़ी भी वह है, स्वीकार करें कि है नहीं पर अब करेंगे, और वो भी अंध निश्चय ना हो, अंध विश्वास वाला निश्चय ना हो। जांचो, परखो, पड़ताल करो। सुबह भी कहा था, देखो ये विकार है क्रोध, ये है काम, कौन सा सुख है इसमें? ये है देह, क्या सुख है इस देह में, इस चमड़ी में? क्या इसमें कोई सौंदर्य है? बकेट ऑफ स्टूल एंड वेरिंग, क्या इसमें सौंदर्य है? सड़ा हुआ देह है ये, क्या इसको देखने के लिए आंखें ललाई थे? चारों विकार का वातावरण, उसमें हम संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा लिए हुए हैं। किस लिए? क्योंकि भगवान का आदेश है। इसलिए नहीं कि पवित्रता से ये होता है, ये हो, केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसने कहा है, और उसने जो कहा है वही सत्य है, और वही सत्य है, और उसके अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। संसार वाली वाले जो आत्माएं हैं झूठ है, वहां पर सत्य यहां है। क्या निश्चय है? पहला कदम निश्चय। दूसरा, जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा में हुई, अचानक बाबा को वैराग आ गया, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। वो बादशाही झूठी लगने लगी। इतना बड़ा बिजनेस स्वाहा कर दिया। दूसरा कदम है वैराग। वो सारे सुख, वो सारे भौतिक सुख जिनका एक बार त्याग कर दिया, वापस मुड़कर उनकी तरफ कभी नहीं गए। अंग्रेजी में कहते हैं कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर। आर्मी का नियम है, यदि बीच में खाई आ जाए तो यहां से ऊपर उस ओर एक पुल डालते हैं, पुल डालने के बाद उधर पहुंचने के बाद पुल को काट देते हैं ताकि वापस भागने का कोई अवसर ना हो। उस दुनिया से इस दुनिया में आने के बाद कट द ब्रिजेस, सारे पुल काट दो ताकि वापस उस शिकारी संसार में जाने का कोई मार्ग ना बचे। ड्राउन द बोट, जिस नाव में बैठकर उस किनारे से इस किनारे आए हो अब डुबो दो उस नाव को, ड्राउन द बोट, ताकि वो विकारी दुनिया, वो विकार, वो काम, वो भोग फिर से ना खींचे। वो शूद्र जीवन, वो शूद्र दिनचर्या
फिर से ना खींचे। वो शूद्र जीवन, वो शूद्र दिनचर्या फिर से ना कीजिए। थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचे हो ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी फेंक दो ताकि वापस नीचे ना हो। क्या ऐसा धधकता वैराग निरंतर हृदय में है? महान आत्माएं एक ही बार प्रतिज्ञा करती है, जिस चीज को छोड़ दिया छोड़ दिया, अब वापस उसकी तरफ नहीं जाना है। जो छोड़ दिया छोड़ दिया तो बाबा का दूसरा कदम है वैराग का, तीसरा कदम संपूर्ण पवित्रता का। इस पवित्रता के लिए इतने विघ्न पड़े, इतनी बाधाएं आई, कितने लोगों ने विरोध किया, क्या क्या नहीं किया, कितनों ने कहा बाबा को इस पवित्रता को हटाओ तो आपकी संस्था में कितने आ जाए, इस ब्रह्मचर्य को हटा दो यहां से। परंतु जो आत्मा जितनी पवित्र है उतनी वो बाप के नजदीक है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो आत्मा जितनी पवित्र है उतनी वो बाप के नजदीक है, क्योंकि बाबा को संपूर्ण पवित्रता प्रिय है। वो चित्र देखा है ना सबने बाबा का, 15 नवंबर 2003 का, सभी सेंटरों पर लगा हुआ है, धर्मराज का रूप, सफेद कागज पर काला दाग। ये मत कहो कि हमने तो थोड़ा ही कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत है। अचानक विरोधी हो गया, राज्य को पता ही नहीं था, सोशल वर्ल्ड, सोशल नेटवर्क सबसे कट ऑफ थी। उसके बाद उन्होंने सेवा चालू की, उस तपस्या में तपने के बाद। हां वो श्रेष्ठ साधन जरूर है, परंतु साधनों को साधन ही रहने दो। साधना उनके वजह से रुक ना जाए, खंडित ना हो जाए। तो ब्रह्मा का तीसरा कदम है संपूर्ण पवित्रता, चौथा सहन करना और सामना करना या समाना। इतना विरोध, इतना विरोध, इतना विरोध, अखबारों में विरोध, लेचरी एंड सॉर्सरी, ये शब्द इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रयोग किए गए थे। सॉर्सरी अर्थात जादू टोना करने वाला, लेचरी अर्थात जो कामुक व्यक्ति होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया था, विचक्राफ्ट, हर तरह से ग्लानी, सब कुछ सहन करते गया, सब कुछ सहन करते गया। हम कितना सहन कर सकते हैं? दादी ने अभी अभी एक क्लास में कहा था, जानकी दादी ने, ब्राह्मणों के पास इंसल्ट को सहन करने की शक्ति बहुत कम है। सहन नहीं कर सकते अगर किसी ने कुछ कह दिया तो, स्टॉक खाली पड़े हैं अंदर। तो ब्रह्मा का कदम था सहना, सहन किया, छोटों को भी सहन किया, साथियों को भी किया तो बड़ों को भी किया, सबको। अगला कदम पालना, पालनहार बना, मां बना, मां बनकर सबकी पालना की। वो जो सारे इतने थे, कितने भिन्न भिन्न सबके संस्कार होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ तो होता होगा छोटा मोटा, पर फिर भी मां बनकर सबकी पालना की। हम नहीं कर पाते उसका कारण है मोह। जैसे एक मां है, उसको उसका बेटा स्कूल से नहीं आया है, वो निकलती है बाहर ढूंढने लगती है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया। किसी को पूछती है, क्या तुमने किसी को देखा? वो कहता है नहीं देखा। और आगे जाती है, कोई कहता है कि वहां एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। वो कहती है, बच्चा कैसा था? वो कहता है, फला फला उम्र थी, उसका भी बच्चा वैसा ही था। ड्रेस कौन सा था? वही ड्रेस था जो इसके बच्चे ने भी पहना था। और वो इतने घबरा जाती है, इतनी घबरा जाती है, भाग भाग के भीड़ के अंदर से जाती है और देखती है कौन है। और जैसे देखती है, मेरा नहीं है, तो क्या हो जाता है? सुकून मिलता है। एक है मां, एक है मातृत्व, एक है मदर, एक है मदरहुड। अपनी देह से दूसरी देह को जन्म देकर मां बना जा सकता है, परंतु मातृत्व एक अवस्था है, मदरहुड एक स्थिति है। मां तो संसार में बहुत है, मातृत्व उनके पास होगा कि नहीं पता नहीं। मातृत्व अर्थात पालना करना, सबको अपना समझकर, वासुदैव कुटुंबकम उर्धार चरितानाम तू, सब मेरे हैं, सभी मेरे हैं। 1964 पोप पॉल मुंबई में आए थे, भारत में विरोध था उनका थोड़ा सा, परंतु बाबा ने क्या कहा था, इनको भी संदेश दो, उनको भी संदेश दो। जगदीश भाई लेकर गए थे सब गिफ्ट वगैरह उनके लिए, ये नहीं सोचा कि ये क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है। और बहुत सारे हिंदुओं का विरोध था, उनके आने में ही विरोध था, फिर भी यज्ञ की तरफ से उनको सौगात दी गई। और पोप पॉल ने भी कहा था, आई विल सी, मैं देखूंगा, अच्छा ज्ञान है आपका। सभी को अपना समझना, केवल मनुष्य नहीं, यहां तक कि वो चिड़िया भी, जानवरों को भी अपना बेटा अपना बच्चा मानना, कितनी ऊंची अवस्था है क्या? हम भी ऐसे पालनहार बने हैं क्या? ऐसा सस्टेनेंस पालना करना करने का संस्कार भी हमारा है क्या? हम सोचते हैं कि ये विश्व की सर्व आत्माओं की मुझे पालना करनी है, कितना ऊंचा संकल्प है। हम पूर्वज है, इसी भूमि को ले लो, इस भूमि पे पर भविष्य में न मालूम कितनी आत्माएं आने वाली है, क्या होने वाला है पता नहीं। मुझे बताया गया बाबा के एक संदेश में, यह भी कहा कि यह भी भूमि कम पड़ जाएगी। बाबा ने बहुत सोच के ही देखकर कहा होगा फ्यूचर को। उन सभी आत्माओं की भी पालना यदि मुझे करनी है तो अभी ही स्थिति को महान और श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा और संकल्पों से उनकी पालना करनी पड़ेगी अभी। तो पालना का संस्कार अपने अंदर लाना है। अगला कदम, संगठन में सामंजस्य, संगठन में हार्मनी। इतना विशाल संगठन था, उन सबको कैसे मैनेज करना? एक है पालना करना, एक है उसमें हार्मनी रखनी। यह एक बहुत बड़ा कदम है। लीडर, ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। जितना गहराई से हम, चाहे यज्ञ जब कराची में था तब को स्टडी करें और जब भारत में आया तब को स्टडी करें, उस सारे संगठन को मिला के रखना ये बहुत बड़ी कला है। हम चाहे घर में हो, सेंटर में हो, या किसी संगठन में हो, ऑफिस में हो, वहां पर हार्मनी रहना, वहां पर अपने मैं को थोड़ा झुकाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो मैं बैठा है वो आहत होता है, बार बार विद्रोह करता है। जैसे बाबा ने अपने आप को जिस तरह से चलाया और उस संपूर्ण संगठन में एक हार्मनी, समस्वरता, वो एक बहुत बड़ा कदम है सीखने जैसा। तो ये कुछ कदम थे उधर के, कराची, सिंध, हैदराबाद के। यज्ञ भारत में आया 1950, 5 मई 1950, 5-5-50 माउंट आबू। सबसे पहली चीज वहां पर थी प्राकृतिक परिस्थितियां। प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना, इतनी ज्यादा ठंड, इतनी ज्यादा ठंड। 76 से पहले माउंट आबू में बहुत ज्यादा ठंड थी। जब पोखरान में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद में थोड़ी गर्मी बढ़ी, पर उसके पहले बहुत ज्यादा ठंड थी। उन सभी प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना, सांप थे ब्रिजकोटी में, क्या क्या था, पर बाबा ने क्या कहा था, ये सांप तो कुछ भी नहीं है, इनसे ज्यादा विषैले तो अंदर के जो सांप है वो है, इनसे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक सूक्ष्म ब्रह्मा के जीवन में जो पहलू है वो है प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से प्रेम। इसके लिए प्रकृति ने भी साथ दिया। कितना अच्छा कदम है ये प्राकृतिक। यदि बहुत ठंडी हो जाए तो हम क्या करते हैं, मौसम की चर्चा करने लगते हैं, आज ठंड ज्यादा है, आज ठंड कम है, आज गर्मी ज्यादा है, आज यहां यहां ये है, यहां वो है, ज्यादा पूरा डिस्कशन उसके ऊपर चलता है एक घंटा तक। कि हमने कभी ये सोचा है कि हम बैठकर प्रकृति का धन्यवाद करेंगे, सतयुग से लेकर अब तक प्रकृति ने कितनी सेवा की है हमारी और हमने क्या किया है उसके साथ, डिफॉरेस्टेशन काटा है उसको, नष्ट कर दिया है उसके सौंदर्य को, यही तो किया है हमने, क्या हमने कभी उसको धन्यवाद दिया है। तो ब्रह्मा का एक कदम है प्रकृतिक, प्राकृतिक परिस्थितियों में भी अचल अडोल। अगला, बेगरी पार्ट। कितने सारी आत्माएं छोड़कर चली गई। यदि हम, हमारे साथ कोई सेवा कर रहा है 10 साल और अचानक एक दिन कहे कि मुझे जाना है, दुख होगा कि नहीं, थोड़े से हम दुखी हो जाएंगे, हिल जाएंगे अंदर से। जो हमारा राइट हैंड है वही एक दिन कहे कि मैं जा रहा हूं, तो कितने सारे कई कई बहाने बना के चले गए साथी यज्ञवत्स। ब्रह्मा कैसा रहा, अचल। इस पेपर को भी पास, उसमें भी यह निश्चय, ये यज्ञ किसका है। कितनों ने कहा हम जाके कमा कर लाते, बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं है, जिसका यज्ञ है वो देखेगा। कितना समर्पण भाव, उसे पता है ये यज्ञ ईश्वरीय है, निरंतर पता है वो, सतत कितना कूट कूट के वो भरा होगा अंदर कि मेरा कुछ भी नहीं है। बेगरी पार्ट में उसकी अचल अडोल अवस्था, ये कदम। अगला, सेवाओं का विस्तार। सेवाओं का विस्तार जिस ढंग से किया, अथक होकर, मुरलियों में बाबा कहते एक भी एरिया नहीं छूटनी चाहिए। कौन सा वो वर्ग है, हमें भी क्या करना है, ऐसा नक्शा निकालो पूरे गुजरात का पूरा, कौन सी वो कंपनी है, कौन सा वो हॉस्पिटल है, कौन सा वो कॉलेज है, कौन सी वो जगह है जहां तक अब तक संदेश नहीं गया है, क्या हम करें, कौन सा वो गांव है, कितना भी अंदर हो हमें वहां तक संदेश पहुंचाना है। ऐसी लगन सेवा की, क्या ऐसी लगन हम में है जैसी ब्रह्मा में थी। अगला, सेवाओं में विघ्न। भयंकर विरोध हुआ आर्य समाज और कईयों के द्वारा। जहां प्रदर्शनी लगती थी, हमने सुना है, वहां पर वो लोग आ जाते थे और पर्चियां बांटते थे, ब्रह्मा कुमारी पाखंड। उसमें भी अचल रहना, उसमें भी अडोल रहना। हापुड़ में हंगामा, क्या क्या हुआ वहां पर, इतने सारे विघ्न, जैसे वहां विघ्न आए थे शुरुआत में, सेवाओं में भी इसी तरह से, जैसे किसी को देखा सफेद साड़ी वाली, दरवाजा बंद, ब्रह्मा कुमारी देखी, दरवाजा बंद, सारे विरोध, सेवाओं में विघ्न, उसमें भी अचल रहना, उसमें भी ऐसा नहीं चलो छोड़ दो, अब हिम्मत नहीं हारना, कितना बड़ा कदम है ये। अंदर कितना कूट कूट के भरा रहना चाहिए कि हमें कैसे भी करके संसार की सभी आत्माओं को भगवान से मिलाना है। अगला कदम, शारीरिक कर्म भोग, शारीरिक कर्म भोग, बीमारियां। सबसे ज्यादा व्यक्ति कब हिलता है? बीमारी में। उस बीमारी की अवस्था में भी अचल रहना, ये योगी की निशानी है। हम अपने हॉस्पिटल में कई सारे ब्राह्मण आत्माओं को देखते हैं, कई सारे हर दिन, कई उसमें से अचल रहते हैं, कई हिल भी जाते हैं, कई एक छोटी सी सुई से डर जाते हैं। और हमने इतनी सारी दादियों को देखा है, यहां सुई, यहां सुई, कुछ नहीं। पालू दादी थी, कुछ नहीं। शांतमणि दादी, मनोहर इंद्रा दादी, कितनी कितनी बीमारियां, कुछ नहीं, अचल अडोल। जानकी दादी को ही ले लो, दादी को हमने इतनी अवस्थाओं से देखा है पिछले 5-6 साल में, ऐसी ऐसी अवस्थाओं में, ऐसी ऐसी बीमारी और ऐसी ऐसी कंडीशन में। अभी अभी बाबा आने का समय हो गया है, 7:30 बज रहे हैं और दादी इधर बेड पर है, सीवियर पेन हो रहा है कि जा ही नहीं सकते। फिर गुलजार दादी आ रहे हैं, फिर दोनों की रूहान चल रही है, फिर गुलजार दादी ले जा रही है, पर जब स्टेज में देखते हैं तो चेहरा ही बदला हुआ है। अभी अभी हम वहां देख के आए, वहां क्या था और अभी क्या है, पूरा बदल गया। कौन सी पावर है ये? जिन बीमारियों के साथ में सारी दादियों को हमने देखा है, जो भी कर्म भोग, परंतु उनकी स्थिति अचल अडोल थी, जिसमें एक साधारण व्यक्ति तो कब का हिल गया होता। इतनी सारी बीमारियां, किसी को सर्दी खांसी हो जाती है, एक रात भर नींद नहीं आई तो कितनी हिल जाती है कंडीशन। शारीरिक कर्म भोग ब्रह्मा को भी कितने सारे आए, परंतु अपनी तपस्या, अपना योग पक्का रहा। ये एक कदम है, शारीरिक कर्म भोग, और वो सबको आएगा। चाहे तुम कितना भी चाहो कि मैं सेवा करूं, फ्रैक्चर होने के बाद क्या करोगे? एक मार्ग है, दुखी हो जाओ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। दूसरा है, ठीक है, अब तक हमने वो सेवा की, अब हम ये करेंगे। मनसा हमने देखा है, छोटी छोटी कुछ कुछ ब्रह्मा कुमारियां है, हॉस्पिटल में आती रहती है, किसी किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी है कि जिसका अभी कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े कैंसर, छोटे छोटे, 20 साल 25 साल। एक कन्या आती है जो धीरे धीरे चल नहीं सकती, उसको एक अजीब सी बीमारी है और धीरे धीरे चलना बंद हो रहा है, दीवार को पकड़ पकड़ के चलती है, परंतु उसकी स्थिति हमने देखा बहुत खुश रहती है। बीमारी अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर, तो शारीरिक कर्म भोग आएगा उसमें भी अडोल। अगला है तपस्या, ब्रह्मा की तपस्या अखंड रही, अखंड चलती रही, उधर भी चलती रही, इधर भी चलती रही, और उस तपस्या ने भी अपना रूप बदला। तपस्या धीरे धीरे सूक्ष्म होती गई, स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्म होती गई। उस तपस्या से भी सीखना है। अगला कदम है त्याग। त्याग का भी अगर विश्लेषण करें तो जो स्थूल त्याग था धीरे धीरे इतना सूक्ष्म होता गया, इतना सूक्ष्म होता गया कि जिसमें लास्ट 68 और 69 के बीच कुछ मुरलियां चली है, जिसमें बाबा ने कहा है, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। सबको लगा ये शिव बाबा के वाक्य है, परंतु वो ब्रह्मा की स्थिति बोल रही थी, बाप इस तन में ऐसे रहते हैं जैसे यहां है ही नहीं। तपस्या का कदम। अगला कितने हुए? कितने हुए? 13. अगला कदम यज्ञ की संचालिका का प्रस्थान. यज्ञ में विश्वकिशोर भाऊ और यज्ञ के कुछ अनन्य रतन ये यज्ञ छोड़कर चले गए, फिर भी बाबा की स्थिति कैसी रही? अचल, अडोल. 69 की बात है, विश्वकिशोर भाऊ मुंबई में थे, बीमार थे, और बाबा ने रात भर बैठकर सकाश दी. 2 बजे देखा एक बहन ने, सकाश दे रहे, तपस्या में बैठे. 4 बजे देखा सुबह, फिर भी बैठे हुए है ये, पूछ रहे बार बार क्या हुआ क्या हुआ. पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा मैं बच्चे को सकाश दे रहा हूं. पहली बार सकाश शब्द का प्रयोग भी यहीं पर हुआ है 68 में. उसके पहले साकार मुरलियों में सकाश शब्द नहीं है. तो और जब 1 बजे दूसरे दिन पता चला भाऊ चले गए, बाबा ने फुल स्टॉप कर दिया. उसके बाद में कभी वर्णन भी नहीं किया उसका, पूछा भी नहीं अब क्या हो अब क्या. जब फोटो दिखाने रमेश भाई आए फ्यूनरल राइट्स के, बाबा ने कहा इसको क्या करना है, फाड़ दो इसको, फोटो देख के क्या करना है, आत्मा का पार्ट पूरा हो गया, आत्मा चली गई. ये एक कदम. अगला कदम निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारिता का कदम. निरंतर अशरीरीपन का अभ्यास और निरंतर जो मैं है कम 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 करते गए, उसको मिटा दिया पूरा. ये बहुत बड़ा कदम है. अगला कदम, समय पूरा हो रहा है इसके लिए हम भी कदम थोड़ा सा तेज बढ़ाएंगे, नहीं तो चर्चा है तो बहुत है. नष्टो मोह का कदम. मम्मा चली गई, सब लोग रो रहे. मनोरिंद्र दादी हमेशा अनुभव सुनाते थे कि मम्मा, हमारी मम्मा चली गई. बाबा कहते बस उनका पार्ट पूरा हुआ, रोने की आवश्यकता नहीं है. जिनको इतना सब कुछ प्यार किया, सब कुछ किया, पर वो डिटैच थे, अलग थे, संपूर्ण नॉट डिटैच. आंतरिक कुछ ना कुछ तपस्या कैसी चालू होगी कि कोई भी याद ना आए, मूल्यों में आता है. जाने का समय पता है, ये समय हम जाने वाले हैं, परंतु बस बताया भी नहीं. देह से भी मोह खत्म, खान पान और वो सारी चीजें तो कहां छूट गई पता नहीं, केवल निमित्त मात्र था वो सब. अगला कदम स्मृति लब्धा, निरंतर याद का अभ्यास, निरंतर याद का अभ्यास. केवल भट्टी है तब नहीं, अपना योग का टाइम टेबल खुद बनाना है, अपना अपनी भट्टी खुद करनी है रोज. सुबह सुबह अमृत वेले संकल्प लेना, आज भट्टी का दिन है. कई लोग अमृत वेला यदि मिस हो जाए तो वो कहते हैं आज हम नाश्ता नहीं करेंगे, अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, परंतु फिर दोपहर के भोजन पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि बात मत पूछो. दिन भर अगर भोजन नहीं किया कोई चीज के, एक रीति से अच्छा भी है, परंतु यदि पनिशमेंट खुद को देनी है, गलती की तो पनिशमेंट दो कि आज मुरली 5 बार पढ़ेंगे, यह पनिशमेंट अपने आप को देनी है. कौन सी पनिशमेंट देंगे? कि आज शाम को जो टाइम हम कंप्यूटर या कुछ और घूमने में लगाते, बैठेंगे बाबा के कमरे में और 1 घंटा योग करेंगे, यह पनिशमेंट दो अपने आप को. नष्टो मोह का कदम. अगला कदम अचल अडोल स्थिति. शुरुआत से लेकर तो अंत तक एक रस अवस्था रखी, यह सबसे बड़ा कदम है. परिस्थितियां कैसी भी हो हिले नहीं, इसके लिए एक छोटा सा संकल्प चाहिए बस, और कुछ नहीं, कि मुझे हिलना नहीं है. माया हिलाएगी, विकार आएंगे. बाबा ने कहा है बीए के पेपर एमए में आएंगे, अर्थात जब यज्ञ में आए थे, जब ब्राह्मण बने थे, बहुत सारे पेपर तुमको आए थे और बाद में उन सारे पेपर को तुमने क्रॉस किया, जीत गए, और अभी लग रहा है वो तो अभी नहीं आएगा, परंतु वो बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। अव्यक्त महावाक्य है 87। परंतु संकल्प की आवश्यकता है कि मुझे हिलना नहीं है। हमेशा हम ये तीन बातें कहते हैं, स्थिति की कीमत है 1 करोड़, सेवा उसके बाद संबंध जो है 1 लाख, सेवा 1000। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो हो वो हो स्थिति, दूसरा है संबंध, आपसी संबंध में प्यार मिठास। जयंती बहन जी ने एक बार उदाहरण सुनाया था किसी दूसरी बहन का कि सेवा में किसी के वजह से नुकसान हो गया और उस बहन ने उस छोटी बहन को बहुत डांटा। आज उस बात को 40 साल हो गए परंतु वो क्रैक अभी भी है संबंध की। सेवा बहुत अच्छी बात है परंतु थर्ड है, पहला स्थिति फिर संबंध। सबसे बड़ा उदाहरण दादी प्रकाशमणि जी का है। एक भाई सुबह सुबह सेवा के लिए आया है शांतिवन में, नया है एकदम, और वो बहुत बड़ी चाशनी बनाते हैं, क्या कहते हैं आप लोग उसे गुजराती में, चाशनी कहते हैं ना, वो इतनी बड़ी कढ़ाई में चाशनी रखी हुई थी पूरा, और वो आया सुबह सुबह 3:30 बजे, उसको लगा पानी है, अब कितने किलो की शक्कर उसमें होगी, और उसने वो पूरा उड़ेल दिया पानी समझकर। और फिर धीरे धीरे बात फैल गई और उसको पता चला, रही है तुमने क्या कर दिया, सब लोग उसको डांटने लगे, देखने लगे, अब तुमको देखना दादी क्या करती है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने यज्ञ का। और वो इतना डर गया क्योंकि नया था, बहुत ज्यादा डर गया, जो आ रहा है उसको क्लास करा रहा है उसकी। और फिर 9 बजे खबर आई कॉटेज में दादी ने बुलाया है, तब तो बस अब उसने लगा अब मिलूंगा और वापस जाना है, अब फाइनल, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, दादी तक बात चली गई, अब क्या होगा मेरा। दादी ने उसको बुलाया, वो बैठा, तो दादी ने पूछा नाश्ता किया है, उसने कहा क्या, उसको तो कुछ वो थर 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 कांप रहा था, तो पता नहीं कितने किलो की शक्कर थी, वो कितना नुकसान कर दिया। तो दादी ने, उसने कहा हाँ हाँ, फिर दादी ने उसको टोली खिलाई और कहा जाओ, बस पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं, वर्णन भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर उसको उस समय कहा होता तो रहता यज्ञ में क्या, अपने जीवन का समर्पण करता यज्ञ में, कभी नहीं। संबंध बहुत जरूरी है, सेवा नहीं हुई चलेगा पर संबंध नहीं टूटना चाहिए। व्यक्ति सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। सेवाएं जो नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ, पैसे आ जाएंगे, व्यक्ति नहीं आएगा, जो माता है वो नहीं जाएगी, वो तो चली जाएगी, जो कुमार है वो चला जाएगा। टॉप मोस्ट स्थिति संबंध और फिर सेवा, तीनों ही महत्वपूर्ण है। पर तो कितने हो गए, 18 कि बाकी है, कोई एक बाकी है, अब वो आप बता दो फिर क्लास को और पूरा करते हैं, वो कौन सा एक कदम है, कौन सा, तुरंत दान महापुण्य। आज सुबह की अव्यक्त वाणी में जो समय के अभाव के कारण दीदी जी ने नहीं पढ़ा, परंतु वो पूरा पाठ था मास्टर दाता बनने के लिए। बाबा ने कहा दो दो दो, देना है देना है देना है, तुम्हें दाता बनना है। ब्रह्मा शुरुआत से लेकर अंत तक यह संस्कार हमेशा ही रहा है, देना है देना है देना है। दान में, देने में पॉजिटिव एनर्जी है, और जब हम देते हैं तो हम खुद भरने लगते हैं, और हमें देना इसलिए भी है क्योंकि हमें देने के संस्कार अपने अंदर भरने हैं, हमें देना इसलिए भी है क्योंकि हम देवता बनने वाले, हमें देना इसलिए भी है क्योंकि आत्माएं इतनी कमजोर है कि डायरेक्ट भगवान से नहीं ले सकती, हमें बीच में आना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। यह भी कारण है कि हमें आत्माओं को देना है। अंतिम युद्ध था कर्ण का, अर्जुन के साथ। स्वप्न में परशुराम आते और कहते कि विजय अर्जुन को दे दो, क्योंकि कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं, दे दो। भगवान के महावाक्य है कि तुम दाता की संतान, मास्टर दाता हो, इसलिए दान करो। तो जो ब्रह्मा ने जैसे ज्ञान योग धारणा सबका दान किया शक्तियों का, तुम भी ऐसे मास्टर ब्रह्मा बनो। ओम शांति।